ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने आर्थिक समृद्धि और जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंजीनियरों का और अधिक व्यवसायिक बनने की आवश्यकता पर दिया जोर। सभी 7 प्रदेशों में पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन संबंधी प्रतिष्ठान स्थापना करने की सरकार ने की तैयारी। आज देशभर में 357 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने और यूरोप के विभिन्न देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने कहा कि इंजीनियर देश निर्माण के प्रवर्तक और विकास निर्माण के संवाहक हैं। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज काठमांडू में आयोजित 60वें इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि आधुनिक पूर्वाधार सुविधाओं का विकास करने के लिए इंजीनियरों की भूमिका अतुलनीय होगी। प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि देश की परिकल्पना के अनुसार विकास निर्माण करने वाले व्यक्ति इंजीनियर ही हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि को अंजाम देने और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजीनियरों को व्यावसायिक बनने के साथ ही क्रियाशील बनने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि इंजीनियरों को दक्ष बनाने के लिए सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि देश के लिए उच्च योगदान देने वाले इंजीनियरों को विभिन्न 7 विधाओं में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय ने कहा कि इंजीनियरों को पेशागत मर्यादा बखूबी निभाना चाहिए। संसद की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने हयात रेजेंसी लगाए तारागांव विकास समिति के नाम पर जमीन और भौतिक संपत्ति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश किया है। आज समिति के सिंह दरबार में हुई बैठक ने ये निर्देश किया। बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ ने बताया कि हयात रेजेंसी के जमीन को वापस करने की कानूनी प्रक्रिया के विषय में मंत्रालय अध्ययन कर रही है। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति ने बस्ती विकास तथा भवन निर्माण संबंधी मापदंड को समानुकूल परिमार्जित करने का निर्देश किया है। समिति की आज हुई बैठक में समिति के सभापति कल्याणी कुमारी खड़का ने भवन निर्माण संबंधी मापदंड 2072 को संशोधित कर देश की भौगोलिक अवस्था अनुरूप ही मापदंड तैयार करने का निर्देश किया। बैठक में शहरी विकास मंत्री मेठमणि चौधरी ने संबंधित क्षेत्र के विज्ञों से आवश्यक विचार विमर्श कर और सभी के सुझाव के आधार पर ही नीति निर्माण करने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि सभा की महिला तथा सामाजिक समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पीड़ित महिलाओं की अपेक्षा अनुरूप संवेदनशील होकर कार्य संपादन करने का निर्देश किया। समिति की आज हुई बैठक ने ये निर्देश किया। ये जानकारी समिति की सभापति नीरू देवी पाल ने दी। बैठक में महिला आयोग की अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली ने बीते आर्थिक वर्ष में संपादित कार्यों के विषय में जानकारी दी। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति में योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 पर बुनियादी विचार विमर्श किया गया। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक में योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय की प्रकृति, संगठनात्मक संरचना, निवेश, अध्ययन, अनुसंधान क्षेत्र लगायत के विषयों में सांसदों ने अपनी अपनी धारणाएं रखी। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने कहा कि ये विधेयक वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसे जल्द से जल्द पास करने की जरूरत है। राष्ट्रसभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने सार्वजनिक संचार माध्यम के कार्यकारी प्रमुख तथा समाचार प्रमुखों से मुलाकात की। मुलाकात में संसदीय गतिविधियों को प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किए जाने के विषय में विचार विमर्श किया गया। इसी बीच अध्यक्ष तिमल सिन्हा ने कहा कि दोनों सदनों की कार्यवाही और सांसदों की अभिव्यक्ति को समान महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ बाबूराम भट्टराय के बीच आज मुलाकात हुई। माओवादी केंद्र के संसदीय दल कार्यालय सिंह दरबार में उनके बीच हुई मुलाकात में समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। ये जानकारी निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ ने कहा कि सभी 7 प्रदेशों में पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन संबंधी प्रतिष्ठानों की स्थापना की जाएगी। मंत्रालय अंतर्गत संचालित नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और तालीम के विषय में जानकारी देते हुए मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए तालीम प्राप्त जनशक्ति को तैयार करने की जरूरत है। काठमांडू में आज से 18 साल से ऊपर के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देना शुरू किया गया। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू ने दी। आज से लेकर शुक्रवार तक सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसी तरह आज देशभर में कोरोना के 357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 62 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। बहरहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1982 है। पेयजल मंत्री उमाकांत चौधरी ने दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सन 2030 तक 50% गंदे पानी का प्रशोधन करने के हिसाब से संरचना बनाने का निर्देश किया। आज ललितपुर के धोबी घाट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा निर्देश दिया। मंत्री चौधरी ने कहा कि 753 स्थानीय तहों में पानी प्रशोधन केन्द्र की स्थापना करने की जरूरत है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने के लिए हम बनाएंगे हमारा विद्यालय अभियान में अग्रसर होने का काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह से आग्रह किया। आज मंत्रालय में उनके बीच हुई मुलाकात में मंत्री पौड़ेल ने ऐसा आग्रह किया। कोरोना महामारी खत्म न होने तक महामारी रोकथाम के मद्देनजर नेपाल के साथ मिलकर काम करने की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग यूसेड ने प्रतिबद्धता जताई है। यूसेड के जरिए अमेरिका ने नेपाल को अब तक 82 लाख कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप के पश्चिमी देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण हुई आग लगी से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और पोर्चुगल में कुछ दिनों से बढ़ी गर्मी के कारण देश के विभिन्न जंगलों में भीषण आग लगी है, जिस वजह से इन देशों का तापक्रम 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां बढ़ रही गर्मी के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, जिनमें अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक हैं। मौसमविदों ने कहा है कि और अधिक गर्मी बढ़ सकती है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए अत्यधिक सतर्कता अपनाने का आग्रह मौसमविदों ने किया है। इसी बीच वेलायत में आज 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब तक का सबसे उच्च बताया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने आर्थिक समृद्धि और जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंजीनियरों का और अधिक व्यवसायिक बनने की आवश्यकता पर दिया जोर। सभी 7 प्रदेशों में पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन संबंधी प्रतिष्ठान स्थापना करने की सरकार ने की तैयारी। आज देशभर में 357 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने और यूरोप के विभिन्न देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।